धरती पर एक दिन बादल भी गरज उठे ना अब बरसेंगे तुम पर। एक दिन पेड़ों ने खाई कसम ना देंगे मीठे फल हम। एक दिन हवा भी कुछ ना बोले बस चुपके से घूट लिया दम। और एक दिन
माटी रूठी आज हमसे बीज उगला तन से। बोली ना दूंगी तुझे जन्म ना मिलेगा दूध स्तन से। ओ ना लो रे ना काला टीका गिर गया तू मन से।
जलती दुनिया को बुझा ले बुझ पे दीपक को बचा ले। सोती किस्मत को जगा ले पतझड़ में फूल खिला ले। बड़ी भूल हुई है हमसे ना रूठ तू गले लगा ले। ओ माटी
दे दे माफी घायल है बढ़ते कदम। कर दे तू अब मरहम।
शांत जलती दुनिया को बुझा दे बुझते दीपक को बचा ले। सोती किस्मत को जगा दे पतझड़ में फूल खिला ले। बड़ी भूल हुई है हमसे न रूठ तू गले लगा ले। ओ माटी बड़ी भूल हुई है हमसे भूल तो हुई है और बहुत बड़ी हुई। अभी इसी भूल को ठीक करना इसी भूल को सुधारना। जो भूले हुई है उनसे सीख कर आगे बढ़ना। आज का जो साधन है टूल नंबर 6 तब पहला साधन बताया स्वाध्याय। दूसरा प्रकृति में वॉक चलना। तीसरा तीसरा वैराग्य। विश्वास अगला, वैराग अगला, निस्वार्थ कर्म और आज का है तप। तप, तप अर्थात, त अर्थात तत्काल, प अर्थात पवित्र, जो तत्काल पवित्र कर दे वो है तप। तप, तप की परिभाषा जो तत्काल पवित्र बना दे वो है तप। तपाना है स्वयं को, बिना तप के इस शरीर से मोह नहीं निकलेगा। ये पांच तत्व, ये पांच तत्व क्या करते हैं? आत्मा ने इन तत्वों को जैसे अपनी क्या समझ रखा है, सुबह की साकार मुरली प्रॉपर्टी, इसलिए आत्मा को इस शरीर से ममत्व हो गया है। तुम्हें अब इस शरीर से ममत्व निकाल अपने घर चलना है, तप करना है। ये यात्रा तप की यात्रा है, तपस्या की यात्रा है, इसमें मेहनत है। और बिना मेहनत के इतना बड़ा पारितोषिक प्राप्त किया नहीं जा सकता। ध्येय बहुत ऊंचा है। तो प्राणिक यात्रा का आज का 94वां दिन और तपस्या के 6 दिन पूरे हुए। संसार में लोग यात्रा करते हैं और यात्रा करते करते थक जाते हैं। अगर कोई एक दिन यात्रा करे तो थकता है, अगर वही व्यक्ति 2 दिन करे तो ज्यादा थकता है, अगर वही व्यक्ति 3 दिन करे और थकता है, 5 दिन 6 दिन। उधर यात्रा करने से थकान आती है और इस यात्रा करने से क्या हो रहा है?
उड़ान।
इस यात्रा में थकान खत्म हो रही है, शरीर हल्का हल्का और हल्का बनता जा रहा है। वो यात्रा थकाती है, ये यात्रा उड़ाती है। वो ईटिंग की यात्रा है, ये ड्रिंकिंग की यात्रा है। एंड ईटिंग इज चीटिंग, ड्रिंकिंग इज फ्लाइंग। बड़ी भूल हुई है हमसे। अपने भूलों का निरीक्षण, किए हुए पापों का दिल से, रोम रोम से, विकर्मों की आलोचना करना, ये एक तपस्या है। विकर्मों की आलोचना करना, अपने किए हुए विकर्मों की, अपने किए हुए पापों की दिल से घृणा उत्पन्न करना, और बहुत श्रद्धा से, बहुत निश्चय से इस यात्रा पर आगे बढ़ते जाना, क्योंकि ये यात्रा जीवन परिवर्तन की यात्रा है, ये यात्रा पश्चाताप की यात्रा है, ये यात्रा साहस की यात्रा है, ये यात्रा अपने संस्कारों से मुलाकात की यात्रा है, अपने संस्कारों को जानने की यात्रा, हु एम आई की यात्रा है, ये यात्रा डिटॉक्स की यात्रा है, और पांचवा ये यात्रा असंभव से संभव की यात्रा है। सुबह की साकार मुरली, बिना योग के सतोप्रधान बनना असंभव है, उसी तरह बिना इस यात्रा के भी आत्मा की खाद, आत्मा के विकार, सबकॉन्शियस माइंड की गहराई में छिपे हुए विकार भस्म नहीं हो सकते। अवचेतन मन के अंतर मन की गुफाओं में, डीप इनसाइड, विद इन द रिसेस ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, विकार छिपे हुए, उनको वहां से निकालना, इसमें मेहनत है। इसलिए ये यात्रा मेहनत की यात्रा है तो मौज की भी यात्रा है। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इस यात्रा में, शरीर हल्का हल्का हल्का, मन का बोझ धीरे धीरे कम होते जाएगा, चिंतन शक्ति बढ़ेगी, मनन शक्ति बढ़ेगी। मुरली वही है जो तब पढ़ते थे 6 दिन पहले, और आज का 7वां दिन आज भी वही पढ़ रहे, परंतु अंतर है आज के पढ़ने में और उस दिन के पढ़ने में, क्योंकि उस दिन डाइजेशन एक्टिव था, अभी डाइजेशन शांत है। उस दिन राक्षस जगा हुआ था, अभी राक्षस सोया है। मुरली ही ताजा शक्तिशाली भोजन है, सुबह का वरदान है। मनन शक्ति से इसे हजम करो। ज्ञान इज फूड। तो आज की पॉइंट पश्चाताप की, साकार अव्यक्त मुरली 10/5/72, जहां व्यर्थ है वहां समर्थ की स्मृति नहीं। समर्थ की स्मृति में रहते हुए कोई भी बोल बोलेंगे तो व्यर्थ नहीं बोलेंगे, ज्ञान रत नहीं बोलेंगे, तो वृत्ति को बोल को भी चेक करो। सुबह की साकार मुरली, तुम्हारे समझाने वाले बोल बहुत कम होंगे, यथार्थ यदि बोल हो तो, याद में यदि बोल हो तो, याद में रहकर समझाएंगे तो ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, तीर लगेगा। खुद याद में रहे नहीं है और दूसरों को समझा रहे, ठगी यहां चल ना सके, ठगी यहां चल ना सके। कई ऐसे समझते हैं कि कर्म कर लिया, पश्चाताप कर ली, माफी मांग ली तो छुट्टी हो गई। कर्म कर लिया, पश्चाताप कर लिया, माफी मांग ली, छुट्टी हो गई। माफी मिल भी गई, फिर भी जो कर्म किया उसका संस्कार तो बना है, वो संस्कार तो खींचेगा। लेकिन नहीं, जितना कितना भी कोई माफी ले लेवे, लेकिन जो कोई पाप कर्म व्यर्थ कर्म भी हुआ, उसका निशान मिटता नहीं है, निशान पड़ ही जाता है, रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं होता। इसलिए ऐसे भी नहीं करना, कहना कि हो गया माफी ले ली, इस रीति रसम को भी नहीं अपनाना। आपका कर्तव्य है संकल्प में, वृत्ति में, स्मृति में भी कोई पाप का संकल्प ना आए। माया के वाइब्रेशन आत्मा को कमजोर कर देते। सुबह का वरदान, अगर कोई भी अपवित्र वृत्ति स्मृति व संकल्प है तो ब्राह्मणपन की स्थिति में स्थित हो नहीं सकते, सिर्फ कहलाने मात्र हो। इसलिए कदम कदम पर क्या रहो, सावधान। तो तप अर्थात तत्काल पवित्र जो कर दे वो तप, तप। आज तपस्या का और एक दिन, तपस्या का 7वां दिन, तपस्या के 6 दिन पूरे हुए, आज तपस्या का सातवां दिन फिजिकल डिटॉक्स धीरे धीरे समाप्त होगा, अभी इससे गहरा डिटॉक्स चालू होगा, इमोशनल डिटॉक्स। हलचल होगी फीलिंग्स में, इमोशंस में, परंतु क्योंकि आज का हमारा टूल है तप, तो तप करना है, और तप अर्थात नई रस्सी, तप अर्थात नई रस्सी। जैसे एक व्यक्ति था, एक साहूकार, एक बिजनेसमैन, एक व्यापारी किसी जंगल से अकेला गुजर रहा था कि अचानक डकैत वहां आ गए, डाकू वहां आ गए और उसे पकड़ लिया। उसका सारा सामान, उसकी सारी जितने भी उसके पास पैसे थे वो सब छीन लिया, और फिर उन डाकुओं ने उसे बांधा रस्सी से और बांधकर छोड़ नहीं दिया। बाजू में एक गड्ढा था, एक कुआ, उस कुएं में ढकेल दिया उसको। कुआ ज्यादा गहरा नहीं था और नीचे झाड़ियां थी, तो उसे चोट नहीं लगी, वो गिर गया और नीचे से चिल्लाने लगा, गुहार लगाने लगा, मदद की, बचाओ बचाओ। एक दूसरा यात्री वहां से जा रहा है, उसे आवाज सुनाई देता है, वो यहां वहां देखता है, कोई नहीं दिखाई देता है, और फिर देखता है कि आवाज जमीन से आ रही है, भागता है, देखता है कुएं में एक आदमी गिरा हुआ है। इस राहगीर के पास एक मोटी रस्सी है, वो उस रस्सी को एक पेड़ से बांधता है और खुद उस रस्सी के सहारे नीचे उतरता है, और जो आदमी है नीचे वो रस्सी से बंधा हुआ है उसकी रस्सी खोलता है, और फिर वो दोनों इस रस्सी के सहारे ऊपर आ जाते हैं। पहली जो रस्सी थी उसने बांधा था, ये जो रस्सी है इसने बाहर निकाला था, वो भी कर्म था, ये भी कर्म है। वही रस्सी बांधती भी है तो वही रस्सी बाहर भी निकालती है। उन्हीं रस्सियों ने, उन्हीं कर्मों ने विकर्म कराए थे। अब ऐसे कर्म करो, ऐसे तप के कर्म करो, ऐसे तपश्चर्या के कर्म करो कि जिन रस्सियों ने बांधा था अब वही रस्सी बाहर निकाल दे कुएं के। जो कारणों से बंधन बने थे वही कारण बंधनों से छुड़ाएंगे। गांठ, ये इसमें अगर कोई गांठ बांधे और इस गांठ से हमको छुड़ाना है, इस गांठ को हम कहे कि इसे छुड़ाओ, तो इसको खींचने से छूटेगी क्या? नहीं। गांठ जिस तरह बंधी गई है उसी रीति से रिवर्स करो उसको। ऐसी बांधी गई है तो ऐसे ही रिवर्स करनी होगी। जैसी जैसी बांधी गई वैसी वैसी उसको खोलते जाओ। तो वही रस्सी बांधती है तो वही रस्सी छुड़ाती भी है। कर्मों ने बांधा है, अब कर्म ही छुड़ाएंगे। प्रार्थना करने से नहीं होगा, बाबा मदद कर दो, मदद कर दो करने से नहीं होगा। जिन रस्सियों ने बांधा है वही रस्सियां अब छुड़ाने का काम करेगी। कितना बुद्धिमानी से काम किया उस व्यक्ति ने, देखा कि वो कुएं में है और उसे रस्सी बंधी हुई है, इसलिए उसने क्या किया, पेड़ से रस्सी बांधी पहले, फिर खुद उतरा, फिर उसकी रस्सी छुड़ाई और फिर दोनों बाहर आ गए। यही काम यहां पर भी करना है। बांधा किसने और छुड़ाना किससे? ईटिंग ने बांधा है, अब ड्रिंकिंग की रस्सी से बाहर निकलो। तो साधना के 6 दिन पूरे हुए और कल के दिन की आत्माओं के क्या अनुभव है वो अभी हम सुनेंगे। 6वां दिन था, बहुत मेहनत का काम है और बहुत ईमानदारी से लोग कर रहे हैं, और इसका पारितोषिक अपने आप मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा और मिल भी रहा है। ये कर्म ऐसा है कि कर्म में ही रिवॉर्ड छिपा है। उसी दिन आज करो और अभी अभी तत्काल खुशी, तत्काल खुशी अनुभव होती है और धीरे धीरे शरीर को हम जैसे आदत डालेंगे वैसे वो बन जाएगा। और आज का टूल हमारा है तप। जैन धर्म में काया क्लेश होता है, क्या करते हैं उसमें, पैदल चलते हैं, नंगे पांव चलते हैं, लोच, लोच पता है, बाल को निकालते हैं उखाड़ उखाड़ कर लोच, आसन पर बैठना आधा आधा घंटा, एक एक घंटा, तीन तीन घंटा, छह छह घंटा एक ही आसन पर, ये भी क्या है, काया क्लेश। ये सब क्यों करते हैं वो लोग, अपने देह से ममत्व हटाने के लिए। तीसरा, कोई कोई जैन दिगंबर मुनि होते वो सोते कैसे, बिस्तर पर नहीं सोते, बैठे बैठे सोने की आदत डाल देते अपने आप को, बस ऐसे ही सोते रात भर, ये भी एक काया क्लेश है। अलग अलग प्रकार के काया क्लेश है संसार में, क्या कुछ नहीं किया है संसार के लोगों ने तपस्या के लिए, आत्मा को शुद्ध करने के लिए, और हम, मैं तुम्हें कोई मेहनत नहीं करा था, परंतु आज बाबा ने दो जगह बोला है तुम्हें इसमें मेहनत है, याद में मेहनत है और दृष्टि शरीर पर ना जाए इसमें मेहनत है। मेहनत का मार्ग तो ये भी है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। अगर संसार के लोगों ने यह सब किया, हमें वो सब करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु उसमें से हम थोड़ा थोड़ा भी कुछ कर ले तो हमें प्राप्तियां बहुत ज्यादा हो जाएगी। उसमें से एक है ये यात्रा, और ये यात्रा तो आनंद की यात्रा है, तो देखते हैं लोगों को आनंद में है या दुख में है।
शांति भैया, भैया आपने बोला था कि वजन रोज चेक करना है, लेकिन मम्मी मशीन लेके नहीं देते, और पड़ोसी के घर जाके अब तक चेक किया, लेकिन आज तो पड़ोसी ने भी बोल दिया कि बेटा मशीन खराब हो गई है, तो अभी कैसे वजन चेक करें। और दूसरा कि हमारा वेट 39 है, बहुत मुश्किल से बढ़ा के सॉलिड खा के मम्मी ने 43 तक पहुंचाया था, पता नहीं क्या कुछ खिलाते थे, अश्वगंधा और वो पता नहीं क्या क्या खिलाते थे, तो मुश्किल से सॉलिड खिला के 43 किया था, लेकिन हम जब प्राणिक डाइट पर है तो वापस से 39 पर आ गया है। अभी मम्मी आपको पर्सनली चैलेंज कर रहे हैं कि अभी आप हमारा वजन बढ़ा के दिखाइए, क्योंकि जो जो आप बोल रहे हैं खजूर केला वो सब खा रहे हैं, और बहुत कुछ, मतलब सॉलिड खाते थे तब भी बहुत कुछ किया था तब यहाँ तक पहुंचा था, अभी लिक्विड में कैसे वजन बढ़ाए, आप प्लीज सॉल्यूशन बताएं।
कई सारी आत्माएं हैं जिन्होंने लिक्विड पर ही अपना वजन बढ़ाया है और बहुत ज्यादा अच्छे से बढ़ाया है। हमारा वजन सॉलिड खा के नहीं बढ़ता है। लोग संसार में हॉस्पिटल में ही ऐसे 3-4 लोग हैं जो बहुत दुबले पतले, और वो सॉलिड बहुत लेते हैं पर वजन बढ़ता नहीं। हमारे ओपीडी में रोज लोग आते हैं, कहते हैं कि ये दिन रात खाते रहता है परंतु जरा सा वजन नहीं बढ़ता, घी का पूरा डिब्बा पी लेते फिर भी वजन नहीं बढ़ता। वजन का संबंध सीधा खाने से नहीं है, और कई लोग मोटे होते हैं वो इतना सा खाते हैं फिर भी इतना सा भी कम नहीं होता है। ये एक नई अंडरस्टैंडिंग है, एक नई समझ है जिसको गहराई से समझना है, और धीरे धीरे लिक्विड की आदत डालनी है और फिर धीरे धीरे लिक्विड से ही वजन बढ़ेगा। इसके बहुत सारे उदाहरण लोगों के हैं। और दूसरी बात, वजन केवल डाइट से नहीं बढ़ता है, वजन बढ़ाने के लिए चाहिए एक्सरसाइज, बिना एक्सरसाइज के वजन नहीं बढ़ेगा। यू नीड गुड वर्कआउट, एटलीस्ट 1 आवर वर्कआउट, हो सके तो जहां आप रहते हैं वहां कोई जिम होगी तो जिम ज्वाइन कर लो, 1 थोड़ी सी ट्रेनिंग ले लो 2-3 मास, और फिर होम जिम, खुद ही घर पे इंस्ट्रूमेंट ले लो और घर पे ही जिम करो। 1 अगर जिम नहीं जा सकते या कोई बंधन है तो वैसे ही जिम सीखो, और जिम के लिए बहुत इंस्ट्रूमेंट्स की भी आवश्यकता नहीं, लोग तो टॉवेल से ही जिम करते, चेयर चाहिए बस जिम करने के लिए, चेयर को ही जिम बना देते हैं। एर्नोल्ड जिसने जो संसार का सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर या पितामह माना गया है, उसने जिम कैसे सीखी, उसको कैसी लगन थी जिम की, उसको तो जाने नहीं देते थे, वो छुप छुप के जिम जाता था, देखता था बॉडी बिल्डर्स को, और खुद फिर धीरे धीरे खुद ही सेल्फ लर्निंग, सेल्फ ट्रेनिंग की अपने आप को, तो ऑटोडिडैक्टिज्म उसको कहते हैं, सेल्फ लर्निंग। तो यहां पर भी एक्सरसाइज के लिए कोई भी बहाना नहीं दे सकता, एक्सरसाइज आप जहां हो वहां कर सकते हो। तो वजन बढ़ेगा एक्सरसाइज से। दूसरा है डाइट। तो लिक्विड डाइट में जितना हो सके धीरे धीरे उसको थिक लिक्विड्स करो, डेंस लिक्विड्स करो। धीरे धीरे आप चाहे तो अनाज का प्रयोग कर सकते हैं, अनाज को भिगो के रखो और उसका सूप जो बनाते हो उसको अनाज में डालते जाओ, थोड़ी सी दाल, थोड़ा सा चावल, रोज थोड़ा थोड़ा उसमें डालते जाओ, तो एक बार का जो सूप ले रहे हैं उससे अपने आप वजन बढ़ेगा। फिर नट क्रीम्स, ड्राई फ्रूट्स जो है उसको भिगो के रखो और उसका क्रीम बना सूप के ऊपर डालो, धीरे धीरे वजन अपने आप बढ़ेगा। और वजन जल्दी बढ़ाने की कोशिश भी नहीं करनी है, वजन धीरे धीरे, धैर्य, समझ, गंभीरता, इससे याद करो, यह है यथार्थ याद। आज सुबह की साकार मुरली वही यहां पर भी है, धीरज, समझ और गंभीरता, ये तीनों से वजन को धीरे धीरे बढ़ाना है। और वजन बढ़ाना या घटाना जीवन का लक्ष्य नहीं है, सबसे पहली बात, वजन बढ़ाना या घटाना जीवन का लक्ष्य है स्वस्थ रहना, हेल्दी रहना, निर्विकारी बनना, ये लक्ष्य है जीवन का। हाँ, बॉडी इमेज, बॉडी वेट और बॉडी इमेज दो अलग अलग चीजें हैं। किसी का बॉडी वेट बहुत अच्छा है पर बॉडी इमेज ठीक नहीं है। और दूसरी बात, इस यात्रा में, कॉस्मिक यात्रा में, ये जो कॉस्मिक यात्रा है, धीरे धीरे हमारा वजन एक ऐसा स्थिर हो जाएगा कि ना घटेगा ना बढ़ेगा, स्थिर हो जाएगा, चाहे हम खाएं या ना खाएं, एक स्टेबिलिटी अपने आप धीरे धीरे अचीव होगी, पर वो इतने जल्दी नहीं होगी। अभी तो ये केवल इनिशिएशन है 21 दिनों का या 9 दिनों का, इसके बाद ट्रांजिशन फेज चालू होगा, वो शायद एक साल मिनिमम या उससे भी ज्यादा साल चलेगा, उसके बाद मैनिफेस्टेशन अर्थात अभिव्यक्ति, अभिव्यक्त होने लगेगा, स्थिर हो जाएगा वजन। और ये कह रहे हैं कि लिक्विड डाइट में वजन कम हो रहा है, तो सबसे पहले तो कैलोरीज को बढ़ाओ, अभी 5 बार ले रहे हो 6 बार कर दो, 7 बार कर दो फ्रीक्वेंसी खाने की। और रही बात वेइंग मशीन की,
मेहनत पर पानी फिर गया,
वेइंग मशीन तो हॉस्पिटल तो हो गई, सरकारी हॉस्पिटल, तो जाते जाते सरकारी हॉस्पिटल अगर कहीं है तो वहां जाके वेट चेक करो। वेइंग मशीन कोई बहुत महंगी भी नहीं है, अगर एक घर में आ जाए तो सारे लोग वेट चेक कर सकते हैं, वो कोई आपके अकेले के लिए नहीं होगा, सब लोग यूज कर सकते हो, और सब लोग वेट कॉन्शियस तो है ही। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओ और डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है आपकी, डॉक्टर से मिलो, आप डॉक्टर कहता है कि आपका वेट कितना है और आपने बता दिया 64.32, तो एकदम इम्प्रेस हो जाएगा वो। और उसको ये भी बोल दो कि आज की मेरी कैलोरीज थोड़ी सी 200 कैलोरीज मैंने कम ली है, तो ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देखेगा, क्योंकि डॉक्टर खुद कहां भी कैलोरीज चेक करते हैं, वो कहेंगे बाप रे ये तो बहुत ही ज्यादा हाई फाई लोग है, ये तो गुरु निकले। तो कैलोरीज और वेट, ये दो हमारे टूल्स है, तो उसके लिए कुछ तो युक्ति रचो और कर लो वेइंग मशीन, बहुत बड़ी बात नहीं है, कुछ ना कुछ करो आ जाएगी, मशीन का आह्वान करो आ जाएगी। और सबसे हमारा, मैं हम आप अपना ही बताते हैं, हमारा पहले वेट 61 था, अभी वेट 68.7 है आज सुबह का, बढ़ गया ना, पर चाहे तो हम 10 किलो कम भी कर सकते हैं, 10 किलो बढ़ा भी सकते, सब हमारे हाथ में है, जब चाहे तब बढ़ाओ, जब चाहे तब कम कर दो, कंट्रोल इधर है।
शांति भैया,
ये 2 महीने में,
मैं गुजरात से हूँ, मैं पूरे नियमों के साथ इस भट्टी को फॉलो कर रही हूँ, 2 दिन सब बढ़िया चला था, लेकिन तीसरे दिन पता नहीं अजीब सा कुछ हुआ जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। शुरू से बताते हैं, हमको छोटे बच्चे बहुत पसंद है, उनको खिलाना, उनके साथ खेलना, वो सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रात को, तीसरे दिन रात को हमें स्वप्न आया था कि जिसमें हम छोटे बच्चे को जोर जोर से पीट रहे हैं, और तब से उस रात से लेकर दूसरे दिन पूरे दिन हमें पता नहीं अंदर से यही आ रहा है कि हम कोई भी छोटे बच्चे को देखते ना तो हमें उन पर गुस्सा आता है और हम उनको पीटने का दिल करता है, और रोते हुए बच्चों को तो और ही ज्यादा पीटने का दिल कर रहा है। तो ये अजीब सी फीलिंग क्या है कि हम सही तो जा रहे हैं ना, प्लीज 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 भैया हमें कुछ बताया इस बारे में।
दिस इज नोन एज मेंटल डिटॉक्स ड्रीम्स। इस यात्रा में और एक चीज का सामना करना पड़ेगा, वो है स्वप्न। स्वप्न में अजीबोगरीब चीजें दिखेगी जो आज तक दिखी नहीं थी कभी, जो कभी सोचा नहीं था वो दिखेगा, क्योंकि स्वप्न हमारे अंतर मन का दर्पण है। स्वप्न में जो दिखता है वो ऐसे ही नहीं आता है, वो डीप इनसाइड से आता है, बहुत गहराई से आता है। खलील गिब्रान की एक कविता है, उस कविता में एक माँ है एक बेटी है, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और दोनों को एक बीमारी है नींद में चलने की। खलील गिब्रान की कविता में माँ बेटी को एक बीमारी है, कौन सी? नींद में चलने की, और माँ बेटी का आपस में बहुत प्यार है। एक दिन माँ बेटी आधी रात को नींद में चलने लगती है, गार्डन पहुंच जाती और वहां अंधेरा ही होता है, तो माँ कहती है अपनी बेटी से, तुम्हारी वजह से मुझे कोई देखता नहीं है, तुम्हारी वजह से मेरी ये गति हुई है, तुम्हारी वजह से, तुम ही मेरे सारे दुखों का कारण हो। और बेटी कहती है, मैं? मेरे दुख का कारण तुम हो। दोनों एक दूसरे को इतनी गालियां देती है और फिर गालियां देते देते बोर हो जाती है और फिर उनको होश आता है। माँ कहती है, अरे बेटी तुम यहां कैसे, तुम्हें तो ठंड लगेगी, चलो अंदर चलो। बेटी कहती है, माँ तुम यहां कैसे आ गई? इतना प्यार करने लगती है और प्यार करते करते दोनों अंदर जाती है। स्वप्न में वो निकलता है जो भीतर है, और हमारे अवचेतन मन में इतना कुछ समाया हुआ है कि वो जब निकलता है समझ नहीं आता है ये है क्या। साधना कर रहे ब्रह्मचर्य की और निकलता है काम, क्लास सुन रहे हैं ब्रह्मचर्य पर और निकल रहा है काम बेकार, उल्टा हो रहा है सब कुछ। यात्रा चालू है प्राणिक प्राण ऊर्जा पर जीने की, और संकल्प किसके आ रहे हैं, दिन रात क्या खाऊं। और ये आ रहा है तो समझ लेना सही जा रहे हो। तो स्वप्न में धीरे धीरे एक अवस्था ऐसी आएगी, प्राणिक स्वप्न आएंगे, और ये जो स्वप्न होते हैं इसमें स्वप्न होते ही नहीं, रादर नींद ऐसी होगी, प्राणिक स्लीप, इसको कहते हैं प्राणिक स्लीप अर्थात कोई भी स्वप्न नहीं। आपको याद करना पड़ेगा पिछली बार मैंने क्या स्वप्न देखा था, उसको 5 महीना हो गया, 6 महीना, 6 महीनों से कोई स्वप्न नहीं, नींद इतनी गहरी इतनी प्रगाढ़ होगी, 1 घंटा 2 घंटा में ही 6-6 घंटे की नींद पूरी हो जाएगी, क्योंकि शरीर में लिक्विडिटी का फ्लो स्टैब्लिश्ड हो गया है, और धीरे धीरे वो भी सत्व प्रदान होते जाएगा। अभी तो हम कह रहे हैं ये भी ले लो, जितना लिक्विड है सब लेते जाओ, फिर धीरे धीरे एक अवस्था आएगी कि हम चूज करेंगे कि हमें लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि ये लिक्विड की यात्रा तो है नहीं, ये प्राणिक यात्रा है, लिक्विड एक छोटा सा साधन है बीच में, हमें इससे भी पार निकल जाना है। तो वो अवस्था भी आएगी और धीरे धीरे स्वप्न समाप्त हो जाएंगे। अभी ये जो स्वप्न आ रहा है कि पहले तो बच्चों से बहुत प्यार है, परंतु अभी जो बच्चे रोते हुए देखते तो उनको मारने की इच्छा होती है, दूसरी बात स्वप्न का इंटरप्रिटेशन नहीं करना है, उनको छोड़ दो, स्वप्न आए आने दो। एयरटेल के मैसेज का क्या करते हो, वोडाफोन के मैसेज का क्या करते हो, डिलीट, ये स्वप्न भी डिलीट कर दो, दूसरों को सुनाने की आवश्यकता नहीं है, आए चले गए, जाने दो उनको, केवल समझो कि ये भी अंदर एक संस्कार था जो कि निकल के हमेशा के लिए चला गया, और वो सत्य नहीं है, वो नित्य अनित्य है, वो मिथ्या है, ये जगत ही मिथ्या है, ये संसार ही एक स्वप्न है। तो इस तरह से डिटैचमेंट का भाव, अनासक्ति का भाव, साक्षी का भाव इन स्वप्न के प्रति, और अपना एक अपने पर्सनैलिटी का, अपने व्यक्तित्व का एक पहलू ये भी है ये जानना है। अगर मैं 100 बातें हूं तो 100 में से ये भी मेरा एक व्यक्तित्व है, हिंसा मेरे अंदर समाई हुई है, मुझे धीरे धीरे और अहिंसक बनना है। अगर दूसरी बात, ये तो स्वप्न था, आप सारे दिन भर और ज्यादा प्यार करो बच्चों से, बच्चों की स्कूल में जाओ, बच्चों को गिफ्ट दो, सब कुछ करो, साकार की ये कर्म करो, फिर आधी रात को अब देखना फिर दूसरे दिन कैसे स्वप्न आते, फिर प्यार वाले स्वप्न आएंगे, क्योंकि कर्मों के आधार पर स्वप्न है। उस दिन 5 प्रकार के स्वप्न बनाए बताए थे, पहला स्वप्न था वो जो सारे दिन भर किया वो रात में दिखता है, दूसरा वो जो दमन किया है, रिप्रेस किया है, वो रात में दिखता है। ये दो स्वप्न थे उसमें। तो वही काम करो सारे दिन भर, तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो ज्यादा चिंता करने की बात नहीं, और जान लो ये क्यों निकला, क्योंकि अब आप छह दिन की, अच्छा ये तीसरे दिन ही हो गया इनको, तीसरे दिन, ये दो दिन किया, ये तीसरे दिन हो गया, तीसरे दिन ही मेंटल डिटॉक्स हुआ है। नेक्स्ट।
ओम शांति भाई जी, मेरा नाम रूपा। आज मुझे अच्छा लग रहा है, बट्टी बहुत अच्छा लग रहा है, कोई भी डिटॉक्स सिम्टम नहीं है। मेरा मन में यही गाना गा रहे हैं मैं बाबा का, और बाबा मेरा कोई भी डिटॉक्स सिम्टम नहीं है। आज मेरा कैलोरी 450 काउंट कैलोरी, एज 37, हाइट 5.6, वेट 44। ओम,
थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।
इनका वेट 45 है, तो थोड़ा सा अनाज इंक्लूड किया जा सकता है, पर अनाज को भिगो के और सूप में इंक्लूड किया जा सकता है। परंतु ये यात्रा हमारी है लिक्विड की यात्रा और प्राणी की यात्रा है। लिक्विड बीच का एक टूल है मात्र, और धीरे 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 हमें अपना ही संबंध समझ में आएगा भोजन के साथ, हमारा क्या रिलेशन है। क्योंकि हर एक का पेट अलग अलग है, हर एक का डाइजेशन अलग अलग है, हर एक आत्मा अलग अलग है, हर एक की बीमारियां अलग अलग है, हर एक की फूड हिस्ट्री अलग अलग है। अब तक जो कुछ खाया है बचपन से, हर एक का अपना अपना है। तो इस अनुसार ठीक अगर सूप लेना है तो ले सकते हैं, पर आप धीरे धीरे जानोगे कि जितने अनाज की मात्रा ज्यादा रहेगी उतना एक नशा सा रहेगा, एक प्रमाद सा रहेगा, नींद रहेगी। क्योंकि अनाज धरती तत्व है, वो नीचे खींचेगा। परंतु हाँ, क्योंकि लिक्विड रूप में ले रहे हैं तो इतना नहीं, एक है पुलाव और एक है वही अनाज को हमने एकदम पतली खिचड़ी के रूप में बना दिया और एकदम थिन कर दिया उसको, ऑलमोस्ट थिन, कुछ भी नहीं दिख रहा है उसमें, है ही नहीं करके। वो और वो दोनों में अंतर है। प्रॉब्लम अनाज का भी नहीं है, प्रॉब्लम है सॉलिड फूड का और लिक्विड फूड का। सॉलिड फूड लेते ही डाइजेशन एक्टिवेट हो जाता है, सॉलिड फूड लेते ही उसमें मेहनत है, सॉलिड फूड लेते ही ये सारा जो जॉज है, टीथ है, ये सब इसको बहुत काम करना पड़ता है। और जैसे ही वो डाइजेशन एक्टिवेट हो जाता है, शरीर की ऊर्जा वो खींच लेता है, और फिर अध्यात्म के लिए ऊर्जा कम बचती है। लिक्विड फूड में फायदा ये है कि हमारा वी एस्केप डाइजेशन, इसलिए बहुत सारी ऊर्जा हमारी बची रहती है। ये था पहला। दूसरा प्रश्न है चीविंग। चीविंग इज अ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज चीविंग। ये चबाना जो है ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि चबाते ही पुराने संस्कार जागते हैं, चबाते ही पुराने संस्कार सरफेस पर आ जाते हैं, और धीरे धीरे वो सब कुछ चालू हो जाता है। फिर वो एक, क्योंकि ये चीविंग देहभान के साथ जुड़ा हुआ है, ये एक्टिवेट होते ही उसके साथ ढेर सारे अन्य संस्कार भी जागृत हो जाएंगे, सब कुछ जागृत हो जाएगा। फिर मां का मोह भी जागृत हो जाएगा, सब कुछ जो कुछ पास्ट में हुआ है वो सब जागृत हो जाता है। इसलिए इतना स्ट्रेस हम केवल एक ही बात पर दे रहे। अब तक संसार में जो स्ट्रेस था वो था रॉ और कुक्ड पर, कि ये रॉ है, ये कुक्ड है, रॉ लेना चाहिए, कुक्ड नहीं लेना चाहिए, ये ऑर्गेनिक है, ये नॉन ऑर्गेनिक, ये एकदम फ्रेश है, ये फ्रेश नहीं है, इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है, इसमें प्रिजर्वेटिव, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, प्रॉब्लम वो नहीं है, ये दूध है, ये दूध नहीं है, ये भी प्रॉब्लम नहीं है। कई लोग 18-18 20-20 साल केवल दूध पर जिए, बाकी आपका जो दूध है उसमें प्रॉब्लम तो है, परंतु ये भी सत्य है कि लोग केवल दूध पर भी जिए, ये भी सत्य। तो प्रॉब्लम उसका है ही नहीं, प्रॉब्लम है सॉलिडिटी और लिक्विडिटी का। जैसे ही सॉलिड लिया जाता है बीमारियां आती है, या फिर कहो संसार में जितनी बीमारी है उसका एक मुख्य कारण है सॉलिड फूड। इसलिए चीविंग इस भट्टी में अलाउड नहीं है। दूसरा है अंगूर और ये सब चबा, खुद चबाने की क्या जरूरत है, बाजू में कोई है उसको दे दो, उसको पूछो मीठा है कि खट्टा है, दुकानदार को ही बोलो तुम ही चबा के बताओ ये खट्टा है कि मीठा है खुद सब करने की जरूरत नहीं, आस्वादक बनने की जरूरत नहीं है। और चबाना क्यों है, और ये जानना भी क्यों है खट्टा है कि मीठा है, वो ले लो। निष्क्रमण अर्थात जो मिला है उसे स्वीकार करो प्रेम भाव से, पेड़ ने दिया है, वो खट्टा हो मीठा हो जो भी रहने दो, फिर इसमें भी समर्पण है। और कितना कितना स्वाद के पीछे पागल होंगे, अस्वाद की साधना, अस्वाद की साधना। स्वाद ही तो है जो पागल कर देता है व्यक्ति को। ये जो है ना देवा, जिसने इसको जीता उसने पूरे इंद्रियों को जीता, जिसने रसेंद्रियों को जितना जीता उसने जनेंद्रियों को भी जीता। ये सब कनेक्टेड है। जिसने इसका जीत लिया, इस टेस्ट को, वो उसकी सारी इंद्रियां अपने आप शांत हो जाती है, अपने आप सब कुछ कंट्रोल में आ जाता है। क्योंकि ये जीत सबसे बड़ी जीत है संसार की, इससे बड़ी और कोई भी जीत नहीं है। नेक्स्ट।
शांति भाई जी, मैं 35 इयर्स की हूँ और मेरी वेट है 42 केजी। लास्ट अभिनव क्रांति पे मैं बहुत अच्छे से भट्टी की थी और उसमें मेरी वेट 47 से 37 हो गई थी। और उसके बाद बहुत सारे शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आई थी और नॉर्मल खाना चालू कर दी थी। अब भी ये शुरू की हूँ ये भट्टी, तो पहले 2 दिन बॉडी पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स, मींस मसल्स, पेन्स वगैरह सब कुछ हो रहा था। अभी कल से मुझे बहुत गुस्सा आ रही है, जैसे कि, और मेरे बचपन से मेरे साथ बहुत सारे दर्दनाक घटनाएं घटी है जो सारे अभी 2 दिन से रिमाइंड हो रही है। और जबकि आज का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जैसे थोड़ा सा गुस्सा आने पे कोई भी चीज होता है तो मैं तुरंत मेरे हाथ से वो मैं फेंक देती हूँ। उस टाइम मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। और 4 साल पहले ज्ञान में आने से पहले मुझे डिप्रेशन था, ज्ञान में आने के बाद वो डिप्रेशन कम हो गया है, पर अभी वो फिर से धीरे 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 बढ़ रहा है। तो प्लीज हेल्प मी कि मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे सजेस्ट कीजिए। ओम शांति।
पिछली जो भट्टी थी वो प्राणिक भट्टी नहीं थी, वो एक एक्सपेरिमेंट था, वो इस भट्टी की तैयारी थी, वो SFV की भट्टी थी, सॉलिड फूड वैकेशन की भट्टी थी। परंतु केवल उसका फोकस डाइट था, उसको हमने यज्ञ इतिहास के साथ जोड़ा था। ये जो भट्टी है ये अलग भट्टी, इसमें तो फर्स्ट क्राइटेरिया ही है कि वेट लॉस ना हो। तो यहाँ पर 2 दिन तो ये सब फिजिकल डिटॉक्स हुआ, मसल पेन हुआ, और अभी तीसरे दिन क्या चालू हो गया, इमोशनल डिटॉक्स, गुस्सा आ रहा है। और पुरानी इस यात्रा में और एक चीज होगी, अपने जीवन में आज तक बचपन से अब तक जितनी भी दुखद घटनाएं होगी, जो जो घाव है आत्मा पर, वो सारे घाव हरे हो जाएंगे, जागृत हो जाएंगे। क्योंकि उनको किसने कवर करके रखा था, भोजन ने, सॉलिड फूड ने उनको ढक दिया था। अब सॉलिड फूड हट गया तो वो सारे चिल्लाने लगेंगे, बाहर निकलने लगेंगे। परंतु जब तक हम उनको जानेंगे नहीं, हम उनका सामना कैसे करेंगे? अब तो पता चला कि क्रोध था अंदर, फूड ने इस क्रोध को ढक दिया था। ऊपर से हम सामान ले रहे थे, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति का दूत हूं, शांति की किरणें फैला रहा हूं, और अंदर में क्रोध का भूत, अंदर क्रोध ही क्रोध था। ऊपर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, ऊपर भयभीत है आत्मा, डर लगता है लोगों से, कमेंट से डर लगता है, क्रिटिसिज्म से डर लगता है, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे इससे डर लगता है, मेरे बच्चे का क्या होगा, पति का क्या होगा, कितने सारे भय। और ऊपर से मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मुझसे शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही है। ऊपर से मैं विश्व कल्याणकारी हूं और अंदर से किसी एक आत्मा के प्रति घृणा। इसलिए कहा तीसरा लक्ष्य इस आत्मा का अपने संस्कारों के साथ में परिचय होगा। 2 दिन भी लिक्विड कर लिया, केवल 2 दिन सॉलिड फूड का त्याग किया, वो 2 दिन में ही ये संस्कार बाहर निकल के आ गया। अब हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, ट्रॉमा जो है बचपन के वो सारे बाहर निकल रहे हैं। तो धीरे 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 यात्रा को जारी रखना है, यात्रा को छोड़ना नहीं है। और पिछली बार 10 किलो वजन कम हुआ था, अभी लक्ष्य रखो कि वजन धीरे धीरे बढ़ जाए। 42 अभी वेट है, रोज लिक्विड कैलोरीज बढ़ाओ, फ्रिक्वेंसी बढ़ाओ, डेंसिटी बढ़ाओ, उसको थिक थिक करते जाओ, थोड़ा सा सूप वगैरह, और धीरे धीरे ये जैसे ही वजन बढ़ेगा, एक सबसे पहला काम होगा कॉन्फिडेंस आएगा। क्या होगा? विश्वास जागेगा कि नहीं, अब मैं इसको कर सकती हूँ। एक तो विश्वास बढ़ेगा और दूसरा ये जो कुछ हो रहा है इनको अपने आप को समझने की और एक नई अंडरस्टैंडिंग पता चलेगी। हमारे शरीर में बहुत जगह हीलिंग अभी चालू है, कहाँ कहाँ क्या क्या है हमें पता ही नहीं है,
वो तो जैसे लिक्विड पे आते हैं तो पता चलता है कि यहाँ का दर्द, वहां दर्द, ये घुटना दर्द, क्या कुछ होता है। एक भाई था, डॉक्टर थे, 60 साल जिसकी उम्र थी, वो इस प्राणी की यात्रा करने आए। 21 दिन की यात्रा थी, एक जगह पर रिट्रीट थी। अब वो जो डॉक्टर थे वो तो मेडिकल साइंस के थे और मेडिकल वालों के पास बहुत ज्ञान होता है, वो ये सब चीजों को थोड़ा कम मानते, तो वो पहले से ही अपने मन में बहुत सारी नकारात्मकता लेकर एंट्री इसलिए की कि इन लोगों का दोष क्या है, इनकी गलतियां निकालेंगे। मना क्लास में बैठे इसलिए है, किस लिए? क्लास सुनने के लिए नहीं, गलतियां क्या क्या है वो ढूंढने के लिए, खुद नहीं करना है, परंतु मिस्टेक्स क्या क्या होती है, उस पर कमेंट्स कैसे किया जाए, उसके विरोध में कैसे किया जाए, उसका अपोजिशन कैसे किया जाए, फिर निंदा और ग्लानी कैसे किया जाए, ये लक्ष्य है। उसी लक्ष्य से वो व्यक्ति, वो डॉक्टर, 60 साल का डॉक्टर, उसके पास 40 साल का अनुभव है मेडिकल का, कहानी उधर की है, लंदन स्पेन वहां की कहानी है। और एक प्रॉब्लम तो उसको भी थी, उसका हाथ जो है ना हिलता ही नहीं था, एक ये वाला राइट हैंड हिलता नहीं था। 15वें दिन उसका हाथ हिलने लगा। काम क्या किया उसने? कुछ नहीं, जो खाता था वही, परंतु लिक्विड, शरीर में सॉलिडिटी की वजह से वो जड़ था, अब केवल लिक्विड ले रहा है, और लिक्विड लेते लेते हाथ हिलना चालू हो गया, मिराकल। वैसे ही यहां पर भी ऐसे बहुत सारे मिराकल हमको दिखाई देंगे। तो ये जो भी सिम्टम्स होंगे इसको समझना, ये डिटॉक्स सिम्टम है, ये आ रहे चले जाएंगे, ये आ रहे हैं, इनको साक्षी होकर देखना है, उनको समझना है, और नोट करके रखो अपनी डायरी में, ताकि उनके ऊपर फिर उसके ऊपर काम करो। अभी फिर पूछो किसी से कि गुस्सा आता है क्या किया जाए, फिर पूछो किसी के ये जो अंदर ट्रॉमा दबा हुआ था इसका क्या किया जाए। नेक्स्ट।
ओम शांति भाई जी, मेरा नाम अमित है। मेरा प्रश्न है, क्या हम गुड़ को, पिटोली को, पीनट बटर या आमंड बटर, इनको चम्मच पे लेके स्लाइवा के साथ मिक्स करके निगल सकते हैं, बिल्कुल लिक्विड बना के, बिल्कुल बिना चबाए, दांतों को टच किए बिना? ओम शांति।
कर तो सकते हैं, पर इसकी दो विधियां है। एक है पाउडर, जैसे तिल गुड़ होता है ना, तिल को बारीक किया, गुड़ को बारीक किया, उसका पाउडर बनता है। तो भारत में तो संक्रांति में वही देते हैं ना हाथ में, एक तिल गुड़ हो गया, इस तरह से बहुत सारे पाउडर्स अवेलेबल है। एक तो वो है, एक है पीनट बटर, वो जो चम्मच से घी है, घी को चम्मच से, आइसक्रीम है चम्मच, परंतु एक है ये विधि लेने की। दूसरा है उसको पानी में डाइल्यूट कर दो और उसका लिक्विड बना दो, वो ज्यादा अच्छा है।
चूसा नहीं जा सकता
इसके, चूस सकते हैं परंतु ये मेथड ज्यादा अच्छी है, वो भारी होगा थोड़ा सा, वो हेवी है। एक है उसी को डायरेक्ट ले लेना, जैसे तिलगुड़ है उसको हम चम्मच से खा ले, अब उसमें चबाना थोड़ा तो पड़ता ही है, बाकी है वो पाउडर, पर उसी पाउडर को आप अपनी स्मूदी में डाल दो। ये जो पीनट बटर है इसको आमंड बटर है, पीनट बटर है, और क्या बताया, गुड़, ये सब को स्मूदी में डाल दो, उसको थोड़ा डाइल्यूट कर दो, वो ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट।
ओम शांति। एक्चुअली टाइम कम है तो मैं डायरेक्ट सवाल पे आती हूँ, क्योंकि बाकी सब ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि घर से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है ये जर्नी कंटिन्यू करने के लिए। मम्मी पापा बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं, और मम्मी को बीपी और शुगर है, तो वो बोलती है कि अभी तेरे वजह से मेरा बीपी बढ़ रहा है, मेरा शुगर बढ़ जाएगा, तू ऐसे मत कर, क्या कर रही है ये। और रात भर जागती है, मेरे ऊपर नजर रखती है कि मुझे कहीं कुछ हो ना जाए, मेरा बीपी बढ़ ना जाए, ऐसे सब करती है। और मुझे कुछ हो नहीं रहा है, फिर भी जबरदस्ती डॉक्टर के पास दिखाने की जिद करती है कि डॉक्टर को दिखा के आते हैं कि क्या चल रहा है इसका। फिर बहुत ही ज्यादा फोर्स करते हैं, कन्विंस करते रहते हैं सॉलिड फूड खाने के लिए। उन्हें लगता है कि ये एबनॉर्मल है और ये क्या इसने शुरू कर दिया है। तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है ये कंटिन्यू करने में। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर रही हूँ अपने हिसाब से जैसे भी, लेकिन इन लोगों का ऐसे एटीट्यूड की वजह से मेरा गुस्सा ज्यादा बढ़ रहा है। मैं गुस्सा करना नहीं चाहती लेकिन फिर गुस्सा आ रहा है। कि क्या समझो ना एक बार कि मैंने कहा ना, और रोज रोज बोलते हैं कि हाँ ठीक है अभी 4 दिन हो गए, अभी 5 दिन हो गए, अब 10, बस हो गया बस हो गया। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे डील करना है।
सबसे पहले तो आप डॉक्टर को दिखाने के लिए बोल रहे तो दिखा के आ जाओ, तो जैसे दिखा के आएंगे वो थोड़ा शांत हो जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर के पास दिखाओगे तो सब कुछ ठीक आएगा, क्योंकि आपको कोई भी तकलीफ नहीं है। तो गेट ऑल द ब्लड टेस्ट डन वन बिकॉज वी नीड टेस्टिमोनियल, और टेस्टिमोनियल में ये 3 बातें, सारे ब्लड टेस्ट कराओ और उनको दिखाओ कि सब टेस्ट नॉर्मल है वन। दूसरा वेट चेक करते रहो, डॉक्टर के पास भी जाओ वेट चेक, पहले इतना था अभी इतना है, रादर अपना वेट पहले से और ज्यादा बढ़ा दो तो और ज्यादा खुश हो जाएंगे वो। और कैलोरी काउंट्स, और कैलोरी काउंट्स। दूसरा, माँ बाप परेशान तो है परंतु वो परेशान आपकी वजह से कम, उनकी अपनी बीमारियां है, उनकी अपनी चिंताएं है, उसकी वजह से व्यक्ति परेशान है, कोई व्यक्ति किसी और से परेशान नहीं होता है, उसका अपने अंदर का ही भय है जो उसे परेशान करता है, वो तो इट इज बट नेचुरल। हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं, एक पेशेंट आता है उसके साथ में 10 रिश्तेदार होते हैं, पेशेंट तो शांत बैठा रहता है, परेशान कौन रहते हैं? रिश्तेदार। ज्यादा चिंता किसको होती है? उनको होती है, क्या हो गया क्या हो गया, और कोई कुछ करना है क्या, और कुछ करना है क्या, एक एक मिलने आता है, इतनी चिंता इतनी ना, इतनी एंग्जाइटी, इतना फियर, कुछ हो तो नहीं जाएगा ना। पेशेंट को पूछते तुमको कुछ हो रहा है? वो कहते मैं एकदम मस्त हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिश्तेदारों को प्रॉब्लम ज्यादा होती है। माँ बाप का चिंता करना लाजमी है, क्योंकि उनको लगता है हमारे बेटे को हमारी बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए, तो इस कंडीशन में उनको विश्वास दिलाओ कि जो मैं कर रही हूँ इट इज राइट। और उनको जो बीमारियां है, सभी बीमारियों का कारण उन्होंने जो खाया है वो है। धीरे धीरे तो उनको भी ये समझाना है कि ये जो बीपी आया है, शुगर आया है, ये क्यों आया है? दैट इज बिकॉज ऑफ सॉलिड फूड, जो सिस्टम में इतने सालों से जो इतना सब डाल के रखा है, अब शरीर बीमार पड़ गया है उसकी वजह से। यू शो बाय योर ओन एग्जाम्पल, और इस यात्रा में डटे रहना है, आगे बढ़ते रहना है, परंतु प्रेम से। बाबा कहते तोड़ निभाओ। एक पूरा परिवार है जिसमें एक व्यक्ति ज्ञान में चलता है, बाकी 9 लोग विरोध करते हैं, तो क्या करता है वो? ज्ञान छोड़ देता है। एक कुमार निकलता है एक परिवार से, जिसके परिवार के सारे लोग उसको कहते हैं शादी करो शादी करो शादी करो, तो शादी करता है क्या? उसका अपना विश्वास है कि मैं जो मार्ग पर हूं सही मार्ग है, और वो अपने मार्ग पर अडोल रहता है, और एक दिन वो 9 लोगों को ज्ञान में लेके आता है। ये मार्ग भी ऐसा है, जो ज्ञान में आने के समय हुआ था वो यहां फिर से होगा। ये प्राणिक ज्ञान, ये प्राणिक यात्रा चालू जब से की, वो पहला जन्म था ब्राह्मण, ये दूसरा जन्म,
प्राणिक शादी है ये।
तो किसी को ज्यादा कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, रिपोर्ट्स कराओ, डॉक्टर के पास जाओ, और जो मन में जो क्रोध आ रहा है वो आपका अपना एक डिटॉक्स सिम्टम है, ये तुम्हारी अपनी कमजोरी है, इस पर तुमको काम करना है। वो क्रोध नहीं दिला रहे, वो तो अपना काम कर रहे, तुम्हारा जो क्रोध आ रहा है वो इट इज बिकॉज ऑफ यू। नेक्स्ट।
ओम शांति भाई जी, प्राणिक यात्रा बहुत अच्छी चल रही है, पर स्किन लूज हो रही है, उसके लिए कुछ कर सकते हैं क्या? स्किन बूस्टर ले सकते हैं? मैंने साथ में 2 फोटो भेजे हैं भाई जी, प्लीज बताइए क्या
लेना है। तो ले सकते हैं, बाकी स्किन लूज की ज्यादा चिंता नहीं करो, अपने आप ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट।
ओम शांति सचिन भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्राणिक यात्रा में आप बहुत बड़े हमारे लिए ऊर्जा शक्ति हो। जो लक्ष्य हमने रखा था संपूर्ण आत्माभिमानी और परमात्मा अनुभव करने का, वह लगता है कि साकार हो रहा है, क्योंकि अब तक के सारे क्लासेस किए भी और सुने भी, लेकिन अंदर एक जैसे कि खालीपन का अनुभव करता होता था, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ 22 साल से, जैसे खुद को गिरगिट का अनुभव कर रही थी, अंदर एक बाहर एक, लेकिन अभी रियल लगता है। थैंक यू भाई जी। भाई जी, आज की कैलोरीज 1200 के करीब है, वेट 60, हाइट 5.4, एज 48 है। भाई जी, मैं 14 से 21 तक रामेश्वर टूर जा रही हूँ, तो उसमें क्या सावधानियां बरतें, इसके बारे में गाइड करें।
ट्रैवल करेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ये यात्रा ऐसी है कि आप अगर एक जगह पर है तो बहुत आसान है, पर ट्रैवल अगर करेंगे तो पूरी प्लानिंग के साथ करनी है, क्योंकि प्लानिंग में ये यात्रा खंडित हो सकती है, संभावना है, परंतु यदि दृढ़ निश्चय है और दृढ़ विश्वास है और फुल प्लानिंग के साथ जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। जहां पर भी जाओ पहले से ही अपना मिक्सर, जूसर, स्मूदी, ये सारा कुछ साथ में लेके चलो, एक तो, और फ्रूट तो सब जगह मिलते हैं। और साउथ में जा रहे, साउथ में नारियल पानी बहुत अच्छा है, बहुत मिलता है नारियल पानी, और वो गिरी के साथ उसका भी कुछ कुछ बना सकते हो, स्मूदी में डाल सकते हो। और वहां का जो नारियल होता है ना, बड़ा नारियल होता है, और वो जो होता है ना, लोग तो केवल नारियल पानी पर रहते हैं उधर, और कुछ पीने की आवश्यकता नहीं, और इतना मीठा होता है। और साउथ में तो बहुत ये सब चीजें हैं, पर फिर भी फुल प्लानिंग के साथ जाना है, संकल्प के साथ जाना है, और पाउडर्स जो है बहुत सारे वो साथ में लेके चलो, ताकि कुछ भी ना मिले तो गर्म पानी में पाउडर डालो और ले लो। तो ये है
नेक्स्ट, एज 44, हाइट 5'4", वेट 55 kg, कैलोरी इनटेक 1200, बाकी भूख नहीं लग रही है, क्रेविंग नहीं हो रही है, बाकी सब क्राइटेरिया ठीक है, डिटॉक्स भी पहले दूसरे और तीसरे दिन हुआ, अभी कोई डिटॉक्स सिम्टम नहीं है, बट हाई एनर्जी वाली फीलिंग नहीं आ रही भाई जी, मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा एनर्जी बढ़ गई है, बिल्कुल नॉर्मली फील कर रहे, बट हाँ भूख पे पूरा कंट्रोल है, मतलब कुछ भी नहीं लग रहा है, जितना लेते उतना भी खाने का दिल नहीं करता है, बस वो कैलोरी के लिए जबरदस्ती से खा रहे हैं। ओम शांति।
एनर्जी धीरे धीरे आएगी। कल ही एक बहन ने अनुभव सुनाया, कल वो 10 किलोमीटर भागी, रनिंग 10 किलोमीटर, इतनी एनर्जी उसको फील हो रही है, वो कहती है क्या करूं अब इस एनर्जी का, तो भागना चालू कर दिया, 10 किलोमीटर भाग के आ गई कुछ तो करना पड़ेगा तो एनर्जी अपने आप आएगी, एनर्जी ऑलरेडी है, वी आर एनर्जी बींग्स, केवल वो एनर्जी ब्लॉक है। आज सुबह की साकार मुरली, प्राण देने वाला है बाप, प्राण देने वाला कौन है, प्राणेश्वर बाप, प्राण ऊर्जा उससे ले लो, तो वो योग को बढ़ाओ, योग जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक ऊर्जा नहीं आएगी, खाली भोजन लिक्विड कर दिया और ऊर्जा आ गया ऐसा भी नहीं है, दोनों चीजें साथ साथ हो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। बाप से ये लव करो, कशिश हो बाप से, ये सब चीजें हो तो खुशी होगी, एक्यूरेट याद में मेहनत है। आज सुबह की सारी मुरली, बाप है तुम्हें सर्च लाइट देने वाला, करंट देने वाला, बाप से करंट लो तो एनर्जी आएगी, बाप से सर्च लाइट लो तो एनर्जी आएगी, योग पढ़ाओ आयु बढ़ेगी, लॉन्जिविटी, तुम स्वस्थ हो जाओगे, क्या क्या बातें बता दी आज, तो एनर्जी आएगी। नेक्स्ट, एक ही दिन में कम से कम 50-60 ऑडियो आ रहे हैं और कई सारे तो मैसेजेस है, अभी कितना ले, सारा नहीं हो पा रहा है
नेक्स्ट, मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ, मेरा हाइट 6 फुट है, वजन 73 है, जो घटकर 72 में आ गया है इसी भट्टी के दौरान, लेकिन सब कुछ सही चल रहा है, डिटॉक्स सिम्टम है सब कुछ, लेकिन एक प्रॉब्लम है मेरे साथ, मेरे पिताजी भी कर रहे थे, लेकिन वो करने के, वो रॉ डाइट में थे, वो करने के बाद उनका पैक में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है, वो एक चीज उठा रहे थे, वो बीच में से सडन से एयर रुक गया, वो अभी कुछ काम नहीं कर पा रहे, अभी क्या करे, उसको एलोपैथी दिखाए या कुछ नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट क्या करे, एक्सरे करे, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो कृपया मार्गदर्शन करें, धन्यवाद।
स्प्रेन हो गया है बैक में, तो सबसे पहले तो डॉक्टर को दिखा दो, एक्सरे करना जरूरी, अगर वो कहते हैं तो एक्सरे करा लो, खाली देखना है कोई फ्रैक्चर तो नहीं है पहला। दूसरा, अगर सिंपल स्प्रेन है तो फिजियोथेरेपी से काफी ठीक हो सकता है, और यदि पेन ज्यादा है, और क्योंकि ये ऑलरेडी रॉ डाइट पर है, तो जो रॉ डाइट वाले होते हैं उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है दवाइयां वगैरह, परंतु अगर पेन ज्यादा है तो एडवाइस ये है कि 3-5 दिन कुछ थोड़ा स्मॉल डोजेस के पेन किलर लिए जा सकते हैं, हाँ वो ठीक हो जाएगा, और बाकी फिजियोथेरेपी कराओ, सेक करो, ये सारी चीजें करो, अपने आप ही ठीक हो जाएगा वो।
ओम शांति भाई जी, हमारे यहाँ पर कल ब्रह्मा भोजन था, पर तब पता पड़ा कि कितने लोग प्राणिक यात्रा कर रहे हैं हमारे साथ साथ, कुछ का तो पता था पर कुछ का नहीं था, तो बहुत अच्छा लगा, एक अलग ही ग्रुप बन गया था, पर किसी को पता नहीं पड़ने दिया और दूसरी चीज कि सबने सफलतापूर्वक हर चीज़ में सफलता पाई, और उसके बाद एक पहले तो लग रहा था कि क्या खाना छोड़ रही हैं, बाप रे क्या छोड़ रही हैं, पर जब थोड़ी देर हो गई उसके बाद हमें ऐसा लगा, मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि हमने बहुत अच्छी जीत पाई, हमने नहीं खा के बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा, मतलब एक जीत का विजय का मैसेज था। हो धन्यवाद।
जितना हो सके यात्रा को गुप्त ही रखना है, कीप इट इनकॉग्निटो। दूसरों को सिखाने की, दूसरों को समझाने की, दूसरों को कन्विंस करने की कोई भी कोशिश नहीं करनी है, अपने तक रखना है बस, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज। बाकी विजय भाव का अनुभव हुआ, बहुत अच्छा है, आगे बढ़ते रहो।
भाई जी आप जो बोल रहे हैं प्राणी की यात्रा जो प्रोसेस है वो तो बहुत अच्छा लगा, सिस्टमेटिक है। एक मतलब हम न्यूट्रिशन के फील्ड में रहते हुए भी ये नहीं कर पा रहे थे, अभी कितना क्लैरिटी नहीं था, अब जितना है एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा हुआ है। मेडिटेशन में भी सुधार आया, सब कुछ अमृत वाला भी बहुत अच्छा हो गया, टाइम भी बहुत बच गया, करीब 90 आवर्स के करीब बचा पर मंथ। और जैसे कभी कभी दिल होता है चबाने के लिए, बट कंट्रोल हो जाता है, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक बात यहाँ पे मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई जी जैसे कुछ रेसिपीज से कैसे हम लोग कैलोरी को ज़्यादा बढ़ा सके वो अगर शेयर करें तो सबके लिए बेस्ट रहेगा। और एक चीज़ है कि हम तो ठीक है इसको कर रहे हैं, बट थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस भी हम सुनना चाहेंगे, क्योंकि उससे हमको और मोटिवेशन मिलेगा और वो कैसे और अच्छे से हम कर पाएं वो भी पता चलेगा, ताकि आप, क्योंकि आपका भी सेवा बहुत ज़्यादा रहता है, हमारा भी वही उस टाइप की कुछ है, तो इसमें कैसे हम बैलेंस करें, कभी कभी चक्कर भी लग जाता है, तो वो थोड़ा सा बताएं, आपका एक्सपीरियंस बताएं, आप क्या लेते हैं वो भी बताएं।
ओम शांति।
एक्सपीरियंस हम बाद में बताएंगे, अभी खाली रेसिपीज की जो बात है वो कल और परसों, वो दो दिन यहाँ रेसिपीज की चर्चा होगी थोड़ी सी, कौन कौन सी रेसिपीज है जिससे वेट बढ़ेगा और वो कैसे बनाई जाए, ये एक बात। और दूसरी, जो लोग 9 दिन तक ये यात्रा करना चाहते हैं, केवल 9 दिन, उनको सॉलिड फूड पर कैसे आना है उसकी चर्चा कल और परसों होगी। जिनको ये यात्रा केवल 9 दिन तक चलानी है, 9 दिन के बाद 10वें दिन वो सॉलिड फूड पर आना है उनको। बाकी जिनको 21 दिन चलानी है वो तो चलते रहेंगे साथ में, पर जिनको वापस सॉलिड फूड पर लाना है, वो सॉलिड फूड का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे उसकी कल और परसों चर्चा होगी। और वो आप लिख के भेजेंगे कि आप 9 दिन तक ये यात्रा पूरी कर रहे हैं, 9 दिन के बाद ये यात्रा नहीं करेंगे, वो आप ग्रुप पे लिख के भेजो, तो आपके लिए ये बताया जाएगा कि सॉलिड फूड पर कैसे वापस आए। क्योंकि 9 दिन सभी लोग तो 21 दिन नहीं करेंगे, 9 दिन वाले भी बहुत सारे हैं, कई लोगों को तो घर वाले ही परेशान कर रहे हैं कि भला ये छोड़ो, और उन्होंने ये बोल के रखा है कि 9 दिन के बाद छोड़ देंगे। तो जो जो छोड़ने वाले हैं वो ग्रुप पे आज और कल ये बता दे कि हमारा प्लानिंग क्या है, हम 9 दिन करने वाले हैं, तो सॉलिड फूड पर कैसे आए उसकी चर्चा कल और परसों होगी, कि कैसे हम वापस सॉलिड फूड पर चले जाएं। ऐसे नहीं कि सीधा लिक्विड से पूरा ही टूट पर सॉलिड पर, वो नहीं, उसकी भी विधि है, धीरे धीरे सॉलिड फूड पर आना है, क्योंकि सॉलिड फूड इज अ पार्ट ऑफ द जर्नी, इस यात्रा का सॉलिड फूड भी एक भाग है। क्योंकि सॉलिड में जाएंगे फिर कुछ दिन उस पर रहो, पता चलेगा दुख क्या है, खुद अनुभव करो, उससे नहीं होगा खाली 4 दिन सॉलिड लिक्विड कर लिया, 9 दिन लिक्विड कर लिया, बहुत अच्छा लगा, नहीं, वापस सॉलिड पे आना है 10वें दिन से, जो आना चाहते हैं, जो नहीं आना चाहते तो आगे उनकी इच्छा है, पर अदरवाइज 9th डे पूरा हो गया, 10th डे सॉलिड पर कैसे है वो भी आप लिख के भेजेंगे कि मुझे 9 दिन का ये मैं पूरा कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मुझे 10वें दिन से सॉलिड पर वापस लौटना है, तो वो हाँ छुट्टी मना सबसे छुट्टी लेनी है, तो वो भी लिख के भेजो, तो हम आपको फिर ये बताएंगे कि सॉलिड फूड पर कैसे आना है। और जिनको 21 दिन तक चलाना है उनकी हमारी यात्रा तो चालू रहेगी। बात रेसिपीज की तो कल और परसों 2 दिन कुछ 3-3 रेसिपीज हम बताएंगे, कल 3 परसों 3, रविनेश भाई है या कोई और, रेसिपीज की यहाँ चर्चा होगी, ठीक है। प्रश्न तो बहुत सारे हैं, ढेर सारे ऑडियोज है, अभी कैसे ले इतना सारे, वो प्रश्न है।
अंति भाई जी, हम 5 लोग मिलकर ये प्राणिक यात्रा कर रहे हैं, 5वें दिन तक हमने सफलतापूर्वक यह क्रॉस कर लिया है और हम विजय बनकर ही रहेंगे, और हम एक यूट्यूब चैनल बनाकर प्राणिक यात्रियों के लिए रेसिपीज का ऐड करने वाले हैं, जल्दी ही हम आपकी परमिशन से ग्रुप में लिंक शेयर करेंगे।
विजय की यात्रा जारी रखो।
विजयी भव। ओम शांति।
तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा, लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव, गगन कहे विजयी भव, भटकी है रोशनी है छटपटा रही रोशनी,
गगन कहे विजयी भव,
घायल है तेरा जल तू नदी है राह बदल, पानी बुलबुला रहा है कल कल कल, तू निकल तू निकल, माटी ने तेरी आज पुकारा, धरती ये पूछे बारंबार, लुट रहा ये चमन तेरा वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन तेरा वतन, आंखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजय भव, गगन कहे विजय भव, विजयी भव। Oh,